निर्मल बहती गंगा, ऊंचे पहाड़ और शुद्ध हवा, ये है उत्तराखंड की पहचान। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज जिंदगी विद रुचा में हम आए हैं इस देव भूमि की यात्रा पर और यहाँ हम मिलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। आज पुष्कर जी से बात होगी उनके निजी जीवन की, राजनीति की, उत्तराखंड के विकास के मुद्दों की और साथ ही बात होगी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की भी। तो चलिए जिंदगी विद रुचा में मिलते हैं पुष्कर धामी जी से। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद रुचा में।
जी जी, बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते।
पुष्कर जी, मुझे लगता है बात सबसे पहले सिलक्यारा टनल और ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, इसी से मुझे शुरू करनी चाहिए। बहुत मुश्किल वक्त था सबके लिए, श्रमिकों के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों के लिए, लीडरशिप के लिए। लेकिन मैं अगर CM से नहीं, व्यक्तिगत तौर पर पुष्कर धामी से जानना चाहूँ, आपके लिए वो 17 दिन कितना मुश्किल वक्त था?
देखिए, मैं सच बताऊँ तो मैंने कष्ट बहुत बार आया, चुनौतियाँ भी बहुत बार आई, लेकिन इस बार की चुनौती बहुत कठिन थी
जी।
बहुत मुश्किल था और रात में सो पाना भी बड़ा कठिन होता था, क्योंकि हमारे परिवार के, हमारे बीच के, हमारे मजदूर भाई हमारे सामने जो है एक सुरंग के अंदर कैद हो गए
जी।
तो कहीं ना कहीं मन में हर समय यही होता था कि अंदर कोई बीमार ना हो जाए, अंदर उनको कोई मानसिक रूप से कमजोरी ना हो जाए, इस प्रकार का मन में एक थोड़ा संदेह जरूर बना रहता था। लेकिन उनसे बात करते थे तो वो भी अंदर से बहुत हौसला देते थे हमें, कहते थे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, आप केवल हमको सुरक्षित बाहर निकाल लीजिए। तो मैं सच कहूँ तो एक मुख्य सेवक के रूप में तो चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमारे यहाँ पर राष्ट्र का काम कर रहे हैं, हमारे बीच के हैं, उनके परिजन मुझे लगता था कितनी परेशानी में होंगे
जी।
और मैं हर बार 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 ये सोचता था कि जब हम एक कमरे में ही बंद हो जाते हैं, अगर कुछ देर के लिए बिजली चली जाती है
जी।
अंधेरे में रहना कितना मुश्किल होता है, तो उनको सुरंग के अंदर रहना कितना कठिन हो रहा होगा
जी।
तो ये सोच सोच कर मैं आपको कह सकता हूँ कि अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उसके बाद भी भगवान की ऐसी कृपा हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत उन्होंने हमको साहस दिया, बहुत उन्होंने हमको हर चीज़ के लिए कोई भी कमी नहीं होने दी। रेस्क्यू इसमें जो अभियान चला उसमें जिस मशीन की भी हमको ज़रूरत पड़ी
वो पहुंचाई गई,
वो उन्होंने पहुंचाई। वायुसेना के हवाई जहाज उसको लेके आए, चिन्यालीसौड़, देहरादून, इंदौर से लाए, हैदराबाद से लाए, चेन्नई से लाए, हर जगह से। यानी जैसे ही हमको विशेषज्ञ कहते थे कि अब हमको इसकी ज़रूरत है, तुरंत वो सब हमको मिल जाता था। पूरी PMO की टीम उन्होंने वहाँ भेज दी, रोज प्रत्येक दिन वो मॉनिटर करते थे, रोज डेली 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे। अत्यधिक व्यस्तता के बीच भी शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन उन्होंने एक न एक बार जरूर बात की, और कई दिन तो ऐसा होता था कि दो दो तीन तीन बार भी बात करते थे। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ भगवान के प्रति,
बच गए, बहुत सबने राहत की सांस ली।
और पूरा देश जिनके लिए, पूरी दुनिया के लोग दुआएं कर रहे हों, उनका निकलना और सुरक्षित आना भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा थी।
आपकी उस समय लीडरशिप की बहुत सराहना हो रही है, बहुत तारीफ हो रही है कि बहुत अच्छे से आपने सब संभाला, लेकिन मैं आपके बारे में जो सोच रही थी तो एक, जैसे आपने कहा, एक इमोशनल, एक चिंता, परिवार, श्रमिकों का क्या होगा। एक होता है, एक तरफ से मीडिया का भी प्रेशर होता है, एक ऊपर से भी प्रेशर होता है, ऑपोजिशन, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये घबराहट रही होगी कि अगर एक भी श्रमिक की जान चली गई तो जो आपको भावनात्मक तौर पर महसूस होगा वो एक बात हो गई, और दूसरी तरफ से जितना आपको सहना पड़ेगा वो घबराहट थी, मन में डर था?
नहीं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था कि ये सब सुरक्षित निकलेंगे। कुछ थोड़ा थोड़ा संदेह रहता था कि कोई बीमार ना हो, किसी प्रकार की उनको अंदर दिक्कत ना हो, लेकिन पूरा भरोसा था कि वो
निकल
सुरक्षित निकलेंगे। और सच बताऊं तो बाहर मीडिया के लोगों ने तो बहुत समर्थन किया, मीडिया के लोगों ने बहुत हमारा भी उत्साहवर्धन किया और पूरे रेस्क्यू अभियान को किसी ने कोई नेगेटिविटी उस तरह की नहीं करी, कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं किया कि जिससे वो ऑपरेशन प्रभावित होता, हम लोग हतोत्साहित होते। उन्होंने भी हमारे साथ भगवान से प्रार्थना करी। अपोजिशन ने भी कोई ठीक है, अब अपोजिशन को जो करना था उन्होंने किया, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे समय में सबकी जो भावनाएं हैं और जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो सबकी एक समान होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आपदा का क्षण होता है
जी।
कि इसमें जब सबकी प्रतिक्रियाएं एक जैसी होती हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होता है।
बिल्कुल, बहुत मुश्किल वक्त था ये, और लगातार एक बार हम देखते हैं कि आपकी जो एक आपके बारे में जो बातें कही जा रही हैं कि धाकड़ धामी, धर्म रक्षक धामी, लेकिन जो लोग आपको बहुत करीब से जानते हैं उनका हमेशा कहना होता है कि बड़े एक सौम्य और नर्म व्यक्तित्व है, तो ये अब आपको एक करना पड़ रहा है, धाकड़ बनना पड़ रहा है, ये इमेज कैसे बन रही है आपकी?
देखिए ऋचा जी, मैंने कभी भी कुछ अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने को कुछ बनाने के लिए, किसी पद पर आने के लिए कभी कोई काम नहीं किया है, और इस दायित्व में भी मुझे जो भी समय मिला है मैंने कोशिश की है। बचपन से मेरा एक मानना रहा है कि कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए करना है, और वो काम मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और सामान्य कार्यकर्ता को मेरी पार्टी ने अवसर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक, मैं कहूँ कि उन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलना जैसा सिखाया। बोलने में भी बड़ा संकोच होता था शुरू में, और कई जगह पर जो अभिव्यक्ति होती है वो भी बहुत अच्छे से नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने इतना साहस प्रदान किया, इतना सारा मार्गदर्शन किया, उसके कारण से आज काम कर पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ सबका कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया है, और मुझे जब भी कोई भी जिम्मेदारी दी गई है, आज तक मैंने अपने जीवन में उन सभी जिम्मेदारियों को कोशिश की है कि जितनी मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको पूरा लगाऊं। और
उसके लिए धाकड़ बन रहे थे?
नहीं, धाकड़ जैसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी अपने को ऐसा नहीं समझा है। मैं तो एक बहुत सामान्य स्थितियों में रहने वाला हूं
जी।
और मैं कोशिश करता हूं कि जो लीडरशिप भी है वह भी समाज जैसे होता है उन्हीं की जैसी होनी चाहिए
जी।
समाज के लोगों के बीच में से ही होना चाहिए। कहते हैं अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों जैसा ही होना चाहिए, तो मैं इसको मानता हूँ।
टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा एक सवाल और मेरा है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन सही हो गया, सब निकल आए, तो एक सवाल ही उठने लगा कि अब जो कंपनी है उस पर क्या कार्रवाई होगी? आपने एक जाँच कमेटी बिठाई है, क्या लग रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट करें?
पहले तो भारत सरकार की तरफ से ही अभी जितने भी इस प्रकार के जो टनल बन रहे हैं सभी के सेफ्टी ऑडिट के आदेश कर दिए गए हैं। सेफ्टी ऑडिट सबका होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर टनल का काम काफ़ी जगह पर चल रहा है, क्योंकि टनल, सड़क, ऐसे जितने भी काम जो राज्य के अंदर हो रहे हैं हम उन सभी कामों की समीक्षा करेंगे
जी।
अभी तो हमारा पहला काम था कि सबसे पहले लोगों को, सबको सुरक्षित बाहर निकालना, इसलिए हमने अन्य बातों पर उस समय चर्चा नहीं करी है
जी जी।
लेकिन लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे और वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, अपने को सुरक्षित मान के काम कर पाएं, ऐसी स्थितियां जरूर हम बनाएंगे
जी। और आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू भी है और मेरे ख्याल से चैलेंज भी है कि उत्तराखंड जहाँ टूरिज्म भी है इतना, पहाड़ हैं, आपको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और विकास का भी, तो एक ये बड़ी एक रस्सी पर चलने जैसा, एक बैलेंस करने जैसा काम है।
आप देख रहे हैं गंगा जी इतनी स्वच्छ जा रही हैं, शुद्ध जल देने का काम, शुद्ध वायु देने का काम। आप दिल्ली से आई हैं, वहाँ का AQI कितना है?
बिल्कुल है।
और यहाँ आप कैसा महसूस कर रही
हैं? बहुत अच्छा लगा जी।
है इतना जो हमारा यहाँ का पूरा भूभाग है हमारे राज्य का, उत्तराखंड का 72% आज फॉरेस्ट है। हमारे यहाँ बड़े बड़े हिम के ग्लेशियर हैं, पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, वनों से आच्छादित है।
उनको बचाना कितना बड़ा चैलेंज है।
तो जो भी विकास का मॉडल हम बना रहे हैं या विकास पर जो काम कर रहे हैं, इकोलॉजी को, हमारी इकोलॉजी प्राथमिकता है, क्योंकि ये हमारा मूल स्वरूप है, ये हमारा बना रहना चाहिए, लेकिन साथ में विकास के काम भी होने चाहिए। अगर विकास के काम नहीं होंगे,
सड़कें नहीं होंगी,
तो पहाड़ की परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, कठिन जीवन है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे, इस प्रकार का मॉडल हम
कोशिश कर रहे हैं,
उसी मॉडल पर चल रहे हैं।
पुष्कर जी, आपको लगता है इकोनॉमी जो है वो सीधे सीधे टूरिज्म से जुड़ी है? जब बट लेकिन जब बहुत टूरिस्ट आने लगते हैं, हम लोग कभी सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि हम लोग आते हैं महानगरों से और हम पहाड़ों को गंदा करके जाते हैं, हम यहाँ की इकोलॉजी को नहीं समझते, हम बैलेंस बिगाड़ते हैं यहाँ का। शायद लोकल आदमी कभी पहाड़ का उसको ख़राब नहीं करता, जो बाहर से आते हैं वो करते हैं, क्या किया जाए इसके लिए?
नहीं देखिए, ये तो चूँकि देवभूमि है, अतिथि देव भव, इसी की तर्ज पर हम सबको मानते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार मन की बात में एक बात कही थी कि यात्रा के भी नियम होते हैं, यात्रा के नियम होते हैं, और विशेष कर से धार्मिक यात्रा। जहां हम बैठे हैं इसी हरिद्वार में, कांवड़ यात्रा में इस वर्ष 4,15,00,000 लोग यहां से माँ गंगा का जल लेकर गए हैं।
4 करोड़
तो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है ये। और लेकिन इस बार हमने स्वच्छता को प्राथमिकता दी, लोगों से भी हमने आह्वान किया, लोग धीरे धीरे उस तो जागरूक हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उससे भी जागरूकता आई है। अभी जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आए हैं वह भी जागरूक हो रहे हैं। ये बात सही है कि इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा एक दिन स्थिति यह आएगी कि कहीं ना कहीं हमको उस पर चेक तो करना ही पड़ेगा,
नहीं तो सब
और
खत्म हो जाएगा।
इस बार भी हमने ये व्यवस्था शुरुआती दिनों में शुरू की थी, तो पूरे देश भर का दबाव आया कि 2 साल यात्रा नहीं हो पाई, 4 धाम लोग दर्शन नहीं कर पाए, इस बार आप उनको थोड़ा उदार हो जाइए, थोड़ा आने दीजिए। लेकिन वो तो हम भी चाहते हैं कि भाई जो भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन करें, लेकिन व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए, उस ओर हमारी चिंता है।
जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं हाल के कुछ सालों में, कई बार लगता है देव नाराज हो रहे हैं देवभूमि से, इतना भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ये वो।
यहाँ की देखिए ये बड़ी चुनौती है उत्तराखंड राज्य, हिमालयीन राज्यों की, कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अभी सिलक्यारा का ये टनल की आपदा थी, पिछले साल हमारी जो है रेणी की आपदा थी, धारचूला के पास एल धारा, कभी आपने सुना होगा बहुत पहले मालपा का हुआ था, केदारनाथ की त्रासदी, उत्तरकाशी में हमारी बरणावत पर्वत की त्रासदी, इस वर्ष भी अति जोशीमठ, अतिवृष्टि, ये सब आपदाओं का हमें प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहना चाहिए, और हमारी तो पहचान भी यही है कि ये हमारा मूल, जो मूल में कहूँगा देवभूमि का जो स्वरूप है वो इन सब से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता से भी जुड़ा है, पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, तो उसको बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, हर स्तर पर काम कर रहे
हैं। आप शेयर करना चाहेंगे क्या क्या इस समय आप कोई कदम उठा रहे हैं ताकि यहाँ का पर्यावरण भी बना रहे, विकास भी होता रहे?
नहीं देखिए, जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे पहाड़ों में अब जो भी शहर हमारे बसे हुए हैं, उन शहरों की हम एक तो बेयरिंग कैपेसिटी, कितना भार वो बहन कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं कि जिससे कि जो अत्यधिक निर्माण की आपाधापी है वो ना हो। जोशीमठ शहर में भी चूंकि बहुत पहले से वहाँ पर निर्माण होता रहा और सब चीज़ें तब सामने आई जब आपदा जैसी स्थिति बन गई, भूस्खलन बन गया, तो इसके बाद हमने ये निर्णय लिया है कि हम इसको करेंगे। माँ गंगा जो जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे अभियान देश के अंदर शुरू किया है, हमने ये संकल्प लिया है कि उत्तराखंड की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा तक माँ गंगा के जल को ए क्लास का भेजेंगे, यानी शुद्ध पीने लायक। तो उसके लिए जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, एसटीपी और जो अन्य उपाय हो सकते हैं, जो गंदे नाले, गंदे सीवर जो इसमें आते थे उसको धीरे धीरे हमने बहुत उसकी तरफ ले गए, सीमित कर दिया है।
चलिए, मुझे लगता है राजनीति की और मुख्यमंत्री के काम की बातें तो बहुत होती रहेंगी, थोड़ा सा आपके निजी जीवन के बारे में जानने की मैं कोशिश करती हूँ आज। गाँव में पले बढ़े एक फौजी पिता का बेटा, कभी सोचा था राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुँच पाएगा वो बच्चा?
देखिए, मैं चूँकि बचपन से बहुत, जैसे एक सामान्य परिवार होता है, एक सैनिक परिवार में पला बड़ा, तो वो सब चीज़ें देखी थी और उन्हीं सब में लालन पालन जो भी हमारा हुआ और बहुत ग्रामीण प्रवेश में हुआ है, तो कभी राजनीति में आने की बचपन में कभी कोई ऐसी बात तो मन में नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मैं लखनऊ विश्वविद्यालय गया, वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में भी जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे छात्र राजनीति में आए, और आते आते ये सब दायित्व तो मिलते चले गए,
विधानसभा
होता चला गया, ऐसा कभी सोचा नहीं था।
कैसा था बचपन, क्या अभाव थे बहुत, थोड़ा उस अपना बचपन शेयर कीजिए।
देखिए मैं बहुत सीमांत क्षेत्र में पैदा हुआ, कनाली छीना से भी एक गांव है आगे पिथौरागढ़ जनपद में, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के नज़दीक, और एक क्लास में मुझे लगता है 4 साल का या मैं 5 साल का रहा होऊंगा, अब मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, जब बचपन की याद है काफ़ी दूर स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता था जब मैं छोटा छोटा था, कभी गिर भी जाते थे पहाड़ों में ऐसे, मुझे लगता है कम से कम 3-4 किलोमीटर तो होगा पैदल जाना होता था,
पहाड़ों पर 3-4 किलोमीटर,
और छोटे बच्चे के रूप में सब जाते थे, हम भी जाते थे उसी में। फिर उसके बाद मैं खटीमा आ गया, तो खटीमा आया तो जो मेरा गांव है नगला तराई है, ये भी नेपाल बॉर्डर के किनारे है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ भी कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल ही स्कूल जाते थे हम लोग, तख्ती में हम लोग लिखते थे पढ़ते थे। फिर थोड़ा बड़े हुए तो मैंने मध्य प्रदेश में सागर में भी 3 साल पढ़ा,
अच्छा,
और 10th तक की पढ़ाई मैंने वहाँ करी, और वहाँ से आने के बाद फिर मैं खटीमा आ गया,
अच्छा,
11th और 12th में
वापस गांव में
खटीमा पढ़े, और मेरे गांव से स्कूल जाने के लिए रास्ते में लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता ऐसा था, वो बिल्कुल जंगल तो पूरा ही था, जंगल तो लगभग 7.5-7 किलोमीटर जहाँ पर मेरा घर है वहाँ से खटीमा शहर होता है, बीच जंगल में सड़क नहीं थी, वहाँ पर फॉरेस्ट होने के कारण से सड़क नहीं बन पाई थी, तो बरसात के दिनों में बहुत कीचड़ हो जाता था वहाँ, बहुत कीचड़, इतना कीचड़ कि आपको बताऊँ कि हमको जो है हम साइकिल से जाते थे, साइकिल हमको कंधे में रखनी पड़ती थी, साइकिल कंधे में रखते थे उसके बाद स्कूल जाते थे, तो घर परिवार में जैसा एक सामान्य परिवारों में होता है वैसे ही हुआ, और आप स्वयं जानती हैं सामान्य परिवार कैसे होते हैं।
तो पहले विधायक और मुख्यमंत्री के तौर पर जब कोई फैसले लेने होते हैं तो अपने बचपन के संघर्ष कितना आपके उसमें थॉट्स में रहते हैं कि हाँ ये संघर्ष मैंने किया तो आज का कोई बच्चा ना कर रहा हो।
देखिए जब भी मैं कोई निर्णय लेता हूँ तो ये जरूर सोचता हूँ कि जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं उनसे, उनको इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उनके जीवन में कुछ इससे परिवर्तन आएगा, उनको कोई सहायता मिलेगी, ये सब विचार आते हैं और निर्णय ले लेते हैं।
कोई बचपन की अपनी कोई घटना आज हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे जो चाहे वो अभावों से जुड़ी हो या संघर्ष से जुड़ी हो, जो आज भी हमेशा आपके होता है ना कुछ यादें ताज़ा रहती हैं।
देखिए बचपन का मैं बताऊँ कि ये जो नए कपड़े होते हैं, ये नए कपड़े हम लोग शायद साल में भी एक बार कभी हम लोगों को मिलते होंगे, कभी कोई शादी हो गई परिवार में, विवाह है या कोई कोई मेला लगा हुआ है, जो उस मेले में उस साल जाना हो तो तब एक बार कपड़े बनते थे, और ये जो आज के बच्चे जो है हलवा पूड़ी जो खाते ही नहीं है, हम लोग हलवा पूड़ी भी तभी खाते थे जब कोई त्यौहार होता था,
और उसके हाँ
पराठा तो बहुत मुश्किल से, मैं आपको बताऊं बहुत अभावों का जीवन रहा है उसको, और मैं समझता हूँ भगवान सब सिखाना चाहता है ये सब, इसीलिए इतना अभाव जीवन को दिखाया होगा।
कभी खुद फौज में जाने का नहीं सोचा बचपन में?
मैं फौज में जाना चाहता था और मैंने उसके लिए बहुत तैयारी भी की, मेरे पूज्य पिताजी ने चूंकि मुझे उस समय रोक दिया,
अच्छा,
हाँ मैं घर में, मैं परिवार में इकलौता था और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, अन्यथा मैं दौड़ लगाता था 5 किलोमीटर रोज,
अच्छा,
हाँ सैनिक तो मैं सीधे सीधे नहीं बन पाया, लेकिन उसके कारण से मेरे मन में एक भाव जरूर आया
देशभक्ति
कि देशभक्ति और जहाँ भी रहो एक सैनिक की तरह काम करो।
अपनी माँ और बहनों से आपका बहुत माँ के खासकर आप बहुत करीब रहे हमेशा, उनका क्या इन्फ्लुएंस अगर मैं कहूँ क्या?
देखिए माँ से मेरा चूंकि क्या है कि मैंने माँ को भी बहुत परेशानियों में देखा और कई बार घर के जो हमारे जानवर होते थे उनके लिए कभी घास काटने जाती थी, घास काटने के बाद खेत में जाती थी, खेत के बाद घर में आती थी, फिर हम लोगों के लिए खाना बनाती थी और परेशानियों में मतलब काफ़ी परेशानी देखी उस समय जो नज़दीक से। इसलिए मुझे लगता है कि माँ और बहनों ने भी वो सब देखा जो हमने देखा। आज तो खैर पूरे उत्तराखंड की मेरी बहनें हो या उत्तराखंड के पूरी हमारी मातृशक्ति हो, सभी का मुझे एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में बहुत प्रेम मिला, बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया।
लेकिन क्या आप उनके जीवन को थोड़ा आसान करने की कोशिश आपकी रहती है, क्योंकि जैसे आपने कहा जो आपने अपनी माँ को संघर्ष करते देखा या परेशानियों में देखा,
उसके लिए हम लोग बहुत सारे काम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा इनक्यूबेटर जो दो सेंटर उत्तराखंड के अंदर हमने बनाए हैं, एक हवालबाग अल्मोड़ा में बनाया है, एक कोटद्वार में बनाया है। दोनों सेंटरों पर माताओं बहनों की ट्रेनिंग के काम हो रहे हैं। यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की है, आज होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म के कई सारी चीज़ों में सब्सिडी दे रहे हैं, लखपति दीदी योजना हमने चलाई है और अभी अभी उत्तराखंड में हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें आगे आएँ उनके लिए हमने 30% का जो क्षैतिज आरक्षण है यहाँ एक विधेयक लाकर हमने उसका प्रावधान कर दिया। 30% का क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की हर नौकरी में हमारी मातृशक्ति के लिए होगी, महिलाओं के लिए होगी। तो ऐसे अनेकों काम हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज जो हमारी मातृशक्ति है वो स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत काम कर रहे हैं। वो केवल अपना ही काम नहीं कर रहे हैं, अपना ही रोजगार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उनको बाजार मिले, उनके लिए अच्छा विपणन हो, उस सब पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को आज GI टैग मिला है भारत सरकार से। बहुत अच्छा अच्छा काम हमारी जो यहाँ की महिलाएं हैं वो कर रही हैं और कुछ उत्पाद उनके द्वारा जो बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हों, चाहे वो खाद्य में हों या अन्य उत्पाद हों, खिलौने हों, वो इतने अच्छे हैं कि वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी जो है फीका कर देते हैं। तो उन सब के प्रोत्साहन के लिए हम योजना बना रहे हैं, हर क्षेत्र में बना रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, जो भी योजनाएं हैं उसमें हमारी मातृशक्ति
ध्यान में
है। हाँ, वो हमारी प्राथमिकता में है। और अभी हल्द्वानी में ईजा बैणी महोत्सव हमने किया था। ईजा और बैणी,
ईजा माँ को बोलते हैं,
हाँ ईजा माँ को बोलते हैं, बैणी और बहन है ना। तो बहुत कम से कम 30,000 से भी ज़्यादा हमारी माताएं बहनें वहाँ हमको आशीर्वाद देने के लिए आई थी। उसके पीछे भी हमारा हेतु यही था कि जो वो काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उनको कहीं ना कहीं एक साहस पैदा हो उनके अंदर और अच्छा काम वो करें अपने अपने क्षेत्रों में।
अच्छा बताइए, आपने भी अपने ग्रोइंग अप में खेतों में काम किया है? जो काम सब आपकी माँ संभालती थी वो आपने भी किया?
हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल। हमने खेती करी है, फावड़ा चलाया है और फावड़ा चलाते चलाते एक दिन तो मेरा पैर ही कट गया था बहुत अभी लगभग, हाँ कम से कम कुछ नहीं तो 14 टाँके लग गए मेरे। एक्चुअली थोड़ा मैं फावड़े से मेड़ बना रहा था।
क्या उम्र थी आप?
मेड़ बना रहा था मेड़। हाँ। मैं उस समय 16-17 साल का रहा होगा। तो मैं फावड़ा चला रहा था, ऐसे जैसे उधर हल्ला हो रहा तो मेरा ध्यान उधर को चला गया और फावड़ा नीचे गया, मेरे पैर पर लग गया इस वाले पर, पूरा कट गया मेरा अलग से। तो उस समय बहुत अच्छे वो भी नहीं थे, एक सामान्य से हमारे आसपास के वहीं रहने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने उसको कर दिया, सिल दिया और उस दिनों में ठीक हो गया। 14 टाँके लगे थे तो रोपाई भी करी है हमने, हाँ धान भी काटे, थ्रेसर भी लगाया है।
अरे
सभी काम किए हैं,
मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामियों के।
हाँ, जो घर में मैंने कहा कि एक सामान्य परिवार में जो काम सब करते हैं वो काम हमने भी किया है, और रात रात भर थ्रेसर लगा के जो है गेहूं निकाले।
अच्छा।
हाँ, और पहले अब तो बहुत सारी नई नई मशीनें आ गई हैं, धान काटने के लिए कंप्रेसर इत्यादि आ गई हैं, तो वो धान जो है वैसे ही कट जाते हैं और उसका जो पराल होता है वो नीचे चला जाता है, धान ऊपर आ जाते हैं। पहले के समय में धान नीचे से काटना पड़ता था, और इसको जो है जो धान की बाली होती है उसको जो है पीट पीट के उसको अलग किया जाता था, वो सब हम लोगों ने किया है।
अच्छा, उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ चले गए, लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की। कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में कि क्या बनना चाहते हैं, कोई सपने रहे होंगे यंग पुष्कर धामी के मन में।
मैं तो देखिए MBBS करना चाह रहा था शुरू में, तो मैंने कोचिंग भी करी।
अच्छा।
हाँ, कोचिंग करी, और ऐसा करते करते मैंने विश्वविद्यालय में एडमिशन भी ले लिया।
लखनऊ में कोचिंग अच्छी होती थी।
हाँ, CPMT की कोचिंग करी, तो न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग आपने
नाम सुना। मैं भी उसी में थी। मैंने भी MBBS की कोचिंग तैयारी की थी, मतलब
SKT सिंह और वो थे वहाँ।
आप और मैं एक ही समय के हैं
जी, तो बिल्कुल है। करते करते ग्रेजुएशन हो गया, फिर वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो फिर उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया MHRM लखनऊ विश्वविद्यालय से। फिर उसके बाद लॉ में मैंने एडमिशन ले लिया था, लॉ भी पूरा किया
जी,
एक साल डिप्लोमा किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और मैं रिसर्च करना चाह रहा था, फिर मैं उत्तराखंड आ गया तो रिसर्च नहीं हो पाएंगे वापस।
कोई मतलब निजी कारणों से या बस आ गए?
नहीं, उत्तराखंड बन गया था तो मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, संगठन की तरफ से ये हुआ कि अब आप जाके उत्तराखंड में ही काम करिए, तो संगठन की योजना होती है तो मुझे युवा मोर्चा या अन्य काम में यहाँ भेजना चाहते थे वो लोग, तो संगठन के उच्चाधिकारियों का भी आदेश था।
संघ से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ?
बचपन में देखिए विद्यार्थी परिषद में, क्योंकि विद्यार्थी परिषद क्या है कि एक विद्यार्थियों का संगठन है, छात्रों का संगठन है, और शिक्षक भी इसमें रहते हैं। ये पहला ऐसा संगठन है जिसमें छात्र और शिक्षक
दोनों
होते हैं पदाधिकारी, और इसके कारण से संघ के भी संपर्क में रहते ही हैं। तो फिर उसके बाद ITC करी, ITC करने के बाद OTC करी मैंने हरिद्वार आकर, गुरुकुल कांगड़ी में, यहाँ संघ शिक्षा वर्ग लगा था उसमें 20 दिनों तक यहीं रहे।
अच्छा।
तो संघ तो बचपन से, चूँकि जो संघ के हमारे प्रचारक होते थे वो इतना अच्छा उनका स्वभाव और मिलनसार और अपने से जोड़ने वाले होते थे कि कोई अगर बच्चा शाखा नहीं भी जाना चाहता है तो वो भी चला जाता था। उनको लगता था कि सवेरे सवेरे जो है सर्दियों के दिनों में भी 6 बजे जो है शाखा लगाने के लिए आ गए हैं, तो और आपके दरवाजे पर आकर कहते थे अरे उठो भाई आज शाखा नहीं चलोगे क्या?
आप जाते थे?
हाँ, शाखा जाते थे।
बचपन से शाखा गए। बट पुष्कर जी क्या होता है ना, आपने इतनी देखिए प्रोफेशनल एजुकेशन सब किया, ह्यूमन रिसोर्स में भी, लॉ में भी, और कई बार आज भी मुझे लगता है, हालांकि अब थोड़े बदलाव आ रहे हैं, लेकिन एक धारणा हमेशा रही कि अरे राजनीति बिल्कुल नेताओं के लिए है, पढ़े लिखे लोग या आम लोगों के लिए नहीं है, जो जाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतनी पॉलिटिक्स होती है, इतनी सब बातें हम लोग हमेशा सुनते रहे हैं। तो कैसे आपने मतलब इतना सब पढ़ लिख के, आप वहाँ भी जा सकते थे, अपना करियर बना सकते थे, किसी भी अच्छी फील्ड में कॉर्पोरेट लाइफ आप इन्जॉय कर सकते थे, ये कैसे हुआ यहाँ आए, और फिर क्या इजी था, जैसा कहते हैं कि नेताओं के बीच में टिपिकल पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस के साथ डील करना?
नहीं, मैंने तो देखे, मैं आपको बताऊं कि कभी भी कोई पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें, जैसा बाहर एक परसेप्शन होता है, उस प्रकार की चीज़ को कभी न किया न कभी सामना किया।
अच्छा। और मतलब सुनने में बड़ा विश्वास नहीं होता।
नहीं, हमेशा एक सच्चाई से काम करते रहे, और जो हमारा संगठन है, संगठन के उच्चाधिकारी लोग हैं हमारे, उन सब लोगों ने स्वयं वो जिम्मेदारी देते चले गए, जगह जगह जिम्मेदारियां दी, और बहुत बार ऐसा लगता है कि जब हम उनसे कहते थे कि मुझे एक आध बार मैंने इच्छा व्यक्त करी कि मुझे मंत्री बनाइए और या इस तरह से मुझे दायित्व दीजिए, तो उस समय दायित्व नहीं मिल पाया। एक बार नहीं, दो तीन बार ऐसा हुआ, निराशा भी हुई।
निराशा हुई,
हाँ। लेकिन अचानक जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे समय में मुझे ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी ने एकदम से जिम्मेदारी दे दी, और एक बार नहीं दो दो बार मुझे ये जिम्मेदारी मिली। ऐसे समय में भी मिली जब मैं पार्टी की सरकार तो बन गई लेकिन मैं चुनाव जीत नहीं पाया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पार्टी ने जिम्मेदारी दी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। इसलिए लगता है कि कभी ऐसा शायद अन्य पार्टियों में कुछ होता हो, मैं नहीं जानता उनके इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी होती होगी।
आपको सर्वाइवल के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी।
भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का नहीं देखा मैंने। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान होता है।
लेकिन जब मुख्यमंत्री का ताज भी मिला आपको, तो अभी की अगर बात करें तो वो ताज बिल्कुल कांटों का ताज की तरह था। बहुत मुश्किल हालातों में आप मुख्यमंत्री बने। हाउ चैलेंजिंग वाज दैट?
पहली बार में तो देखिए, मैं ऐसे समय में बना था कि जब बिल्कुल चुनाव आने वाला था, और लेकिन कठिनाई जितनी भी आई हो, हमारा नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी, हमेशा उन्होंने एक जैसे परिवार के बच्चे को सब सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से करते हैं, वो उन्होंने हमेशा मेरे साथ किया। इसलिए मुझे कभी भी जो कठिन से कठिन स्थिति भी थी, मैं आपको बताऊं, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि बहुत मैं कठिनाई में हूं, मैं अकेला हूं।
मैं कभी दुविधा लगी कि अभी ये पद लूं या नहीं लूं, इतने मुश्किल हालात में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं?
नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे, और ये मैंने कभी इसी पद में नहीं, किसी भी पद में, किसी भी जिम्मेदारी में, जो पार्टी ने दी एक सिपाही की तरह कि भाई आप काम दे दिया, आप करना है आगे, तो जो होगा जनता तय करेगी, भगवान तय करेंगे, लेकिन मैं अपना काम पूरा करूंगा, और उसके लिए मैं जितना मेरे अंदर सामर्थ्य था मैंने पूरा लगाया। पूरे चुनाव में, जहां प्रदेश के कोने कोने में चुनाव से पहले मुझे जाना था, मैं गया। एक एक दिन में, कभी कभी तीन तीन जिलों में भी मैं एक साथ गया। एक दिन में तीन जिलों में कार्यक्रम किए, और अंतिम कार्यक्रम देहरादून में आके करता था।
कुछ अलग पढ़ रहे थे, राजनीति में आ गए, विधायक का चुनाव हार गए लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। क्या लगता है आपको, अपनी जब लाइफ की पैटर्न देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ये आर यू अ डेस्टिनीज चाइल्ड, मतलब बस ये सब आपके भाग्य में लिखा है इसलिए मिल रहा है, किसको श्रेय देते हैं आप?
मैं देखिए, ऐसा है कि ये मानता हूँ कि कर्म करते रहना चाहिए, और जैसा कहा है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। तो कर्म पूरा करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए। जैसे मुझे, मैं ये सोचता कि मैं कठिन समय में मुझे मुख्यमंत्री बना दिया है, और अब 6 महीने में क्या हो सकता है, ये मैंने एक दिन भी नहीं सोचा। ऊपर से उसमें जो सबसे बड़ी प्रेरणा थी वो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उनकी प्रेरणा से हमको जो है कोई काम कठिन नहीं लगा।
लेकिन डे टू डे चैलेंजेस तो आपको झेलने हैं ना, आप कोई आपको सामना करना है।
मैं उनको बहुत आसानी से उनका सामना करता हूँ, और मैं बहुत परेशान नहीं होता। जितने भी चैलेंजेज आए हैं आपने देखा होगा, सब गंगा मैया की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, सारे चैलेंजों पर भगवान ने जो है कहीं ना कहीं उनको समाधान की ओर ले गए।
आपके बारे में मैं कुछ पढ़ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब आप विधायक थे उस समय भी आप अपने बेटे को शायद एक आंगनवाड़ी केंद्र में भेजते थे, मेरे क्या है वो?
मेरे दोनों ही बेटे गांव में ही पैदा हुए, और दोनों की पढ़ाई आंगनवाड़ी केंद्रों में हुई। दोनों आंगनवाड़ी में दो दो तीन तीन साल तक पढ़े हैं। उसके बाद वो खटीमा के एक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने जाना शुरू किया, तो घर में गाड़ी थी, एक गाड़ी, दो गाड़ी, और पहले से क्योंकि सभी साधन थे, वो अलग गाड़ी से भी जा सकते थे। कुछ लोग कहते भी थे कि इनको जो है अलग गाड़ी से भेज दीजिए, आप तो विधायक हैं। तो घर में भी थोड़ा रहता था कि थोड़ा सुरक्षा के कारण से, उस कारण से मैंने कहा नहीं, जिसमें सब बच्चे जाते हैं गाँव के, अच्छा। उसी टेम्पो में ये भी जाएंगे।
अच्छा।
हाँ, टेम्पो से जाते थे, और वो इतना काम आया कि अब वो जब देहरादून आए हैं तो देहरादून में जो माहौल है उसमें भी एडजस्ट करने में उनको दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि डाउन टू अर्थ शुरू से रहे हैं।
अच्छा।
हाँ, तो उनके अंदर कभी ये नहीं आना चाहिए कि हम कुछ लोगों से अलग हैं। ये मैंने उनको पूरी तरह से एक पिता के रूप में, जो मैं उनको एक संस्कार कहिए या शिक्षा कहिए, जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है जो मैंने अपने पिताजी से सीखा, मैंने कोशिश करी कि वो भी आगे बढ़े उसी तरह से।
ये ज्यादातर ना लोग ये सवाल महिलाओं से पूछते हैं, और मुझे लगता है ये सवाल पुरुषों से भी पूछा जाना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस, आप एक मुख्यमंत्री हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, परिवार पर बच्चों पर कितना ध्यान दे पाते हैं, कैसे बैलेंस कर?
अब देखिए, बैलेंस ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग भी अब ये जानते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, और बहुत ज्यादा रहता नहीं है। दोनों ही बेटे अब कभी हमको नहीं कहते कि पापा हमको कहीं घुमाने ले जाइए, क्योंकि वो बल्कि मेरी धर्मपत्नी कभी कहती भी थी तो वो दोनों ही के दोनों ये कहने लगते हैं कि पापा को बहुत काम है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो है कि जब परिवार के बच्चे जो है छोटे, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, 11-12 साल के हैं।
अच्छा।
तो उनके समझ में ये आ गया है कि ये हम काम पर रहते हैं, काम करना पड़ता है, काम है, जिम्मेदारी है। और वैसे भी अभी तो पूरा ही उत्तराखंड के 1,25,00,000 लोग सभी हमारे परिवार हैं, तो उस परिवार की चिंता करने का काम मेरे जिम्मे है, मेरी दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो उसमें मुझे कोई व्यक्तिगत अगर मैं परिवार देखूं तो मैं समझता हूं कि मैं अपने साथ भी और अपने दायित्व के साथ भी ठीक प्रकार से न्याय नहीं कर रहा हूं।
आप चाहेंगे कभी आपके बेटे भी राजनीति में आए, मतलब ऐसा सोचते हैं आप?
देखिए, ये तो भविष्य में तय होता है कि कौन किस क्षेत्र में जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग कभी भी इसके पक्षधर नहीं रहे हैं कि बिना किसी काम करे कोई भी किसी उसमें आ जाए, जो उसके परिवार में होता रहा है या राजनीति में जो लोग करते रहे हैं। राजनीति हो या समाज का कोई भी क्षेत्र हो, दक्षता होनी चाहिए पहले तो उनके अंदर, जो है काम करने की वो पोटेंशियल होना चाहिए, काम करना आना चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा जो है एजुकेशन, अच्छे संस्कार, ये सब देंगे और जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा।
चलिए, उत्तराखंड में आज की तारीख में अगर मैं आपसे कहूँ, आपको 3 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या दिख रहे हैं और क्या आप उनके के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या निकाल रहे हैं?
देखिए, मैंने ये हमेशा सोचा है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारे लिए चैलेंज है। उत्तराखंड की इकोनॉमी बढ़े, उत्तराखंड की माताओं बहनों की जो जीवन स्तर है वो बदले, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुँचे, उस तक सुविधाएं पहुँचे, इसको हमने चैलेंज के रूप में लिया है और काम कर रहे हैं। इसीलिए अभी डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हम कर रहे हैं, और उसके लिए हमने पिछले 4 महीने से लगातार तैयारियाँ की हैं। हम विदेशों में भी गए हैं, देश के अंदर भी, चेन्नई से लेकर मुंबई, अहमदाबाद,
इन्वेस्टमेंट से लाने के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह,
इंडस्ट्री लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए।
फिर वही चैलेंज आ जाएगा, विकास वर्सेस पर्यावरण।
वो देखिए, ऐसा है कि जो हमारा पर्वतीय भूभाग है वहाँ पर जिस प्रकार की इंडस्ट्री जा सकती है, वहाँ के भूगोल के अनुरूप, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो ये हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून का कुछ इलाका है, ये हमारा पास बहुत बड़ा इंडस्ट्री का पहले से ऑलरेडी बहुत बड़ा हब है। फार्मास्यूटिकल आज पूरे देश का 22% हम यहाँ से करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारे यहाँ बहुत काम है, इंडस्ट्री के सेक्टर में बहुत काम है यहाँ पहले से। तो हमारे पास पहले से काफ़ी सारी ज़मीनें यहाँ पर हैं और काफ़ी इंडस्ट्रियाँ पहले से चल रही हैं।
यहाँ जिस जगह हम बैठे हैं, हरिद्वार, अभी आपने कांवड़ की बात की, यहाँ आप एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं।
जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया है, काशी में, बनारस में कॉरिडोर बनाया है, उसी की तर्ज पर ये हरिद्वार और ऋषिकेश पर गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हमने निर्णय लिया है, जो 2026 तक हमारा बन जाएगा।
अच्छा।
हमने मंत्रिमंडल में उसका निर्णय ले लिया है, क्योंकि ये स्थान पूरा विश्वविख्यात स्थान है। हरिद्वार में माँ गंगा के दर्शन के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, आस्था और श्रद्धा का ये केंद्र है। हरिद्वार हमारा योग की राजधानी है, पूरे योग के रूप में, आयुष के रूप में। तो ये दोनों के बीच में कॉरिडोर एक बनना चाहिए। लोगों के लिए यहाँ चलने के लिए एक पथ होना चाहिए, हैं अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा रिवर का जो फ्रंट है वो बनना चाहिए, तो उस पर काम कर रहे हैं हम लोग।
और एक नई टाउनशिप की जो बात की थी आपने, वो क्या है
नई टाउनशिप? दो टाउनशिप अब मैदानी क्षेत्रों में तो बहुत टाउनशिप हमारी बन रही है और स्वतही बन रही है, कुछ प्राइवेट भी बन रही है, सरकार भी कुछ प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ दो मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, दोनों ही मंडलों के पर्वतीय क्षेत्र में दो जगह पर हमने ये तय किया है कि दो नए शहर बनाएंगे।
अच्छा,
हाँ, उसको मास्टर प्लान के अनुरूप उसमें हम जमीन की तलाश कर रहे हैं कि उसका सर्वे कर रहे हैं कि कौन से स्थान पर वो सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं जहाँ अच्छी टाउनशिप बन जाए, तो उसके लिए काम कर रहे हैं।
चलिए मेरे आखिरी दो सवाल, क्योंकि अब गंगा आरती का समय हो रहा है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस आपको क्या लगती है?
सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं कहूँ तो मैं देखिए बहुत कर्म करने पर विश्वास करता हूँ एक तो, हाँ मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ऐसे ही हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा।
कर्मयोगी हैं आप?
कर्मयोगी कहिए या कर्म पर विश्वास करने वाला हूँ और उसमें और परिश्रम करने से मैं कभी कभी मतलब परिश्रम से पीछे नहीं रहा हूँ, और ये आपको दिखता भी होगा वैसे, मतलब दिन भर में जो है कभी मैंने अभी तक वैसे मैंने कभी छुट्टी भी नहीं ली है, कभी मैं अपने काम से अलग भी नहीं गया हूँ। कमी में ये कह सकता हूँ अपनी कि
कमी है, मैं मुझे लगता है वीकनेस कमजोरी
कि मैं सबको अपनी तरह ही समझता हूँ कमी कहिए या मेरी स्ट्रेंथ कहिए ये भी, क्योंकि मैं सब पर विश्वास करता हूँ, हाँ, और बहुत सरलता से मैं सबके साथ घुल मिल जाता हूँ।
वो तो आज मैं महसूस कर पा रही हूँ आपकी सरलता।
तो अब कई बार लोग कहते हैं कि आप जो है इतना क्यों एकदम से वो करते हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं, तो मैं मानता हूँ कि जब मैं अपनी तरफ से विश्वास करता हूँ तो सामने वाला भी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगा।
चलिए, गांव का छोटे से गांव का लड़का आज मुख्यमंत्री बन गया है, अब आगे के अपने जीवन के लिए क्या सपना है पुष्कर धामी का?
अभी तो जो मेरी पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो काम दिया है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का बिल्कुल टॉप राज्यों में लाना है, हर उत्तराखंड वासी को इसका गौरव हो।
अपने लिए कोई सपना नहीं है कोई और पद?
मेरा यही सपना है कि हमारा उत्तराखंड जो है सर्वश्रेष्ठ बने।
अच्छा,
श्रेष्ठ बने, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पद है, और इतनी जिम्मेदारी मुझे मेरी पार्टी ने दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इस काम को मैं सब अच्छे से कर पाऊँ और ठीक से चीज़ों को धरातल पर उतार पाऊँ, माताओं बहनों के चेहरों पर उनकी आँखों में एक चमक ला पाऊँ, तो मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो गया।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं पुष्कर धामी जी,
और
एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जिस तरह से सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन आपने किया। एक छोटा सा तोहफा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ।
बहुत धन्यवाद। अरे आप तोहफा लाई हैं?
मुझे लगता है आज हम इतने अच्छे मौके पर यहाँ हैं और गंगा आरती का वक्त हो रहा है, तो आरती भी की जाए।
क्यों नहीं, ये तो सौभाग्य है गंगा आरती में शामिल होना, माँ गंगा की कृपा हो रही है।
चलिए
Thank you. अब बच्चे के करियर की फिक्र नहीं, उसके अचीवमेंट्स पर फक्र होगा जब आपका बच्चा आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेगा।
होटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, फार्मेसी एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हल्द्वानी। फॉर एडमिशन्स विजिट amrapali.ac.in।